नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 903 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पीटर एशेज की अमेज़न किंडल फायर HD 10 2021 यूजर गाइड। 11वीं पीढ़ी के फायर HD 10 टैबलेट के लिए बनाई गई एक व्यावहारिक निर्देश पुस्तिका है। इसका विषय साहित्यिक विश्लेषण नहीं बल्कि उपकरण का रोजमर्रा उपयोग है। पुस्तक विशेष रूप से नए उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखती है जिन्हें टच स्क्रीन, अमेज़न खाते, एप्स और डिजिटल सामग्री के साथ क्रमबद्ध सहायता चाहिए। इसमें टैबलेट की बनावट और डिस्प्ले से शुरुआत करके वाईफाई, ईमेल, एलेक्सा, ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, प्रोफाइल, बच्चों के नियंत्रण और स्टोरेज जैसे विषय शामिल हैं। मार्गदर्शिका का उद्देश्य पाठक को केवल बटन पहचानना नहीं बल्कि फायर टैबलेट को पढ़ने, वीडियो देखने, ऑडियो सुनने, संवाद करने और घरेलू एलेक्सा सुविधाओं के लिए उपयोगी बनाना है। चित्रों और चरण दर चरण निर्देशों का दावा इसे तकनीकी शब्दावली से डरने वाले पाठकों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास है। फिर भी उपलब्ध समीक्षाएं बताती है कि इसकी उपयोगिता व्यक्ति की पूर्व तकनीकी जानकारी और अपेक्षित विस्तार पर निर्भर कर सकती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले आरंभिक सेटअप, अमेज़न खाता और वायरलेस कनेक्शन की बुनियाद। पुस्तक का पहला उपयोगी आयाम फायर HD 10 को चालू करने के बाद की बुनियादी तैयारी है। टैबलेट की स्क्रीन, नियंत्रणों और प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे बिना बाकी सेवाएं प्रभावी ढंग से नहीं चल सकती। इसीलिए मार्गदर्शिका अमेज़न खाते से उपकरण को जोड़ने, वायरलेस इंटरनेट से कनेक्ट करने और ईमेल खाते की व्यवस्था जैसे कामों को केंद्रीय स्थान देती है। अमेज़न खाते का संबंध केवल खरीदारी से नहीं है बल्कि किंडल पुस्तकें, प्राइम वीडियो, ऑडिबल सामग्री, ऐप डाउनलोड और उपकरण की निजी सेटिंग्स तक पहुंच से भी है। वाईफाई कनेक्शन की सही व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि अनेक सेवाएं इंटरनेट पर निर्भर हैं, जबकि कमजोर या गलत नेटवर्क से डाउनलोड, सिंक्रोनाइजेशन और वीडियो चलाने में बाधा आती है। ईमेल सेटअप व्यावहारिक संचार के लिए टैबलेट को अधिक उपयोगी बनाता है। शुरुआती पाठक के लिए इस भाग का मूल्य क्रम में है क्योंकि यह अलग अलग विकल्पों को एक साथ आजमाने के बजाय पहले खाता और कनेक्टिविटी की नींव मजबूत करने का संकेत देता है। वरिष्ठ उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में यह व्यवस्था विशेष महत्व रखती है क्योंकि उनके लिए अस्पष्ट साइन इन स्क्रीन या पासवर्ड प्रक्रियाएं अक्सर पहली रुकावट बनती हैं। पुस्तक का घोषित चित्रात्मक तरीका इन्हीं आरंभिक चरणों में सबसे प्रासंगिक है। हालांकि उपयोगकर्ता को यह ध्यान रखना होगा कि अमेज़न के इंटरफेस और सुरक्षा विकल्प समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए स्क्रीन पर मौजूद वर्तमान निर्देशों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा, ऐप्स अमेज़न ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर तक पहुंच का व्यावहारिक दायरा। फायर HD 10 का अनुभव उसकी सामग्री और ऐप से बनता है, इसलिए पुस्तक अमेज़न ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करने और गूगल प्ले स्टोर की स्थापना या एंड्रॉइड ऐप साइड लोडिंग जैसे विषयों को उठाती है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि फायर टैबलेट का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर वातावरण सामान्य एंड्रॉइड टैबलेट से अलग है और मुख्यतः अमेज़न की सेवाओं के आसपास संगठित है। पाठक के लिए ऐप स्टोर का प्रयोग सीखना नेटफ्लिक्स, स्काइप और अन्य संगत सेवाओं तक पहुंच का व्यावहारिक मार्ग हो सकता है। पुस्तक अतिरिक्त स्टोरेज, अनावश्यक ऐप्स हटाने और उपकरण को साफ रखने जैसे रखरखाव संबंधी बिंदुओं का भी उल्लेख करती है। इनका मूल तर्क सरल है, सीमित आंतरिक स्थान भरने पर अपडेट, डाउनलोड और उपकरण की गति प्रभावित हो सकती है। गूगल प्ले स्टोर या साइड लोडिंग का विषय उपयोगकर्ता को अधिक विकल्प दे सकता है लेकिन इसमें सावधानी की आवश्यकता भी निहित है। आधिकारिक स्टोर से बाहर की फाइलें केवल भरोसेमंद स्रोत से ही लेनी चाहिए क्योंकि असत्यापित ऐप्स गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। इस तरह पुस्तक उपयोग की स्वतंत्रता और तकनीकी जिम्मेदारी दोनों से जुड़ी है। शुरुआती उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयोगी क्रम पहले अमेज़न ऐप स्टोर और आधिकारिक डाउनलोड को समझना है। अधिक उन्नत बदलावों को तभी अपनाना उचित है जब वे उसकी वास्तविक जरूरत के अनुकूल हों और वह अनुमति अपडेट तथा ऐप स्रोतों के परिणाम समझता हो। तीसरा, एलेक्सा, शो मोड और मनोरंजन सेवाओं को घरेलू उपयोग में बदलना। मार्गदर्शिका फायर HD 10 को केवल पढ़ने की स्क्रीन नहीं मानती बल्कि एलेक्सा समर्थित घरेलू मीडिया और सहायक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें एलेक्सा ऐप डाउनलोड करना, एलेक्सा स्किल्स, खरीदारी सूची, एलेक्सा हंचेज, गैस के लिए एलेक्सा से भुगतान संबंधी सुविधा और शो मोड जैसे विषयों का उल्लेख है। शो मोड का विचार टैबलेट को ईगो शो जैसी दृश्यात्मक सहायक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करने से जुड़ा है जहां समय, जानकारी, वीडियो या एलेक्सा आधारित प्रतिक्रियाएं प्रमुख रूप से दिखाई जा सकती है। इसका लाभ उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जो स्पर्श के बजाय बोलकर सरल काम शुरू करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए सूची बनाना, संगीत या ऑडियो बुक चलाना, सामान्य जानकारी मांगना और सामग्री खोजने जैसे काम आवाज के माध्यम से अपेक्षाकृत सहज हो सकते हैं। पुस्तक किंडल पुस्तकें, अमेज़न ऑडियोबुक, वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं पर भी ध्यान देती है, जिससे अलग अलग माध्यमों में मनोरंजन और सूचना की खपत का दायरा बनता है। लेकिन इस भाग को सुविधा के साथ गोपनीयता के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। एलेक्सा की आवाज संबंधी सेटिंग्स, खरीद की अनुमति और खाते से जुड़े भुगतान विकल्पों को समझना जरूरी है, विशेषकर साझा पारिवारिक उपकरण में। एलेक्सा द्वारा सुझाई जाने वाली हंचेज उपयोगी हो सकती है, पर वे अनिवार्य निर्देश नहीं है। पुस्तक का व्यावहारिक योगदान यह है कि वह पाठक को टैबलेट की निष्क्रिय स्क्रीन से आगे बढ़ाकर आवाज, दृश्य और मीडिया के संयुक्त उपयोग की संभावनाएं दिखाती है। चौथा, किड प्रोफाइल, पेरेंटल कंट्रोल और पासवर्ड से साझा टैबलेट की सुरक्षा। फायर HD 10 अक्सर परिवार में साझा किया जाता है और पुस्तक इस वास्तविकता को पेरेंटल कंट्रोल, किड प्रोफाइल, कई प्रोफाइल और एप्स को पासवर्ड से ब्लॉक करने के माध्यम से संबोधित करती है। यह भाग केवल बच्चों को स्क्रीन से रोकने की चर्चा नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य अलग उपयोगकर्ताओं की सामग्री, खरीदारी और पहुंच को व्यवस्थित करना है। किड प्रोफाइल के जरिए अभिभावक बच्चे के लिए उपयुक्त अनुभव बना सकते हैं और सामग्री अथवा समय संबंधी सीमाएं लगा सकते हैं। अलग प्रोफाइल वयस्क उपयोगकर्ताओं को भी अपनी पुस्तकें, वीडियो सुझाव और निजी सेटिंग्स अलग रखने में सहायता देते हैं। पासवर्ड और स्क्रीन लॉक का उपयोग उपकरण खोने, अनधिकृत खरीदारी होने या निजी ईमेल तक पहुंच जैसी स्थितियों में पहली सुरक्षा परत देता है। पुस्तक का महत्व यहाँ इसलिए बढ़ता है कि नए उपयोगकर्ता सुविधा के लिए सुरक्षा चरण छोड़ देते हैं, जबकि एक बार खाता और भुगतान साधन जुड़े हों तो लापरवाही के परिणाम व्यापक हो सकते हैं। सुरक्षा नियंत्रणों का उपयोग संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक प्रतिबंध किसी बच्चे के वैध अध्ययन या परिवार के सहज उपयोग में बाधा डाल सकते हैं और बहुत धीरी व्यवस्था नियंत्रण का उद्देश्य समाप्त कर देती है। इसलिए पाठक को प्रोफाइल बनाते समय आयु, उपयोग की जरूरत और साझा करने की सीमा पर विचार करना चाहिए। यह पुस्तक सुरक्षा को किसी विशेषज्ञ स्तर की तकनीकी प्रक्रिया की बजाय सामान्य घरेलू डिजिटल अनुशासन के रूप में रखती है। यह दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार टैबलेट चलाने वाले अभिभावकों के लिए उपयोगी है। अंत में, पुस्तकें, लाइब्रेरी बुक, स्टोरेज और रीसेट द्वारा दीर्घकालिक रखरखाव, पुस्तक का एक अलग व्यावहारिक पक्ष डिजिटल सामग्री के प्रबंधन और सामान्य समस्या निवारण से जुड़ा है। इसमें किंडल पुस्तकों को हटाना, सार्वजनिक लाइब्रेरी से ईबुक उधार लेना और लौटाना, अमेज़न ऑडियोबुक सुनना, अतिरिक्त स्टोरेज लगाना, SD कार्ड फॉर्मेट करना, बैटरी तेजी से खर्च करने वाले ऐप्स पहचानना और फैक्ट्री रीसेट जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ये विषय बताते हैं कि टैबलेट का उपयोग केवल सामग्री लेने तक सीमित नहीं है, सामग्री की जगह, अवधि और स्वामित्व अथवा उधार की स्थिति को संभालना भी जरूरी है। लाइब्रेरी ईबुक उधार लेना विशेष रूप से उपयोगी विकल्प है, क्योंकि इससे पाठक हर पुस्तक खरीदने के बजाय उपलब्ध सार्वजनिक सेवा का उपयोग कर सकता है। पुस्तक हटाना और संग्रह व्यवस्थित करना उपकरण को कम अव्यवस्थित रखने में मदद करता है। SD कार्ड अतिरिक्त स्थान दे सकता है, लेकिन फॉर्मेट करने से उस पर मौजूद डेटा मिट सकता है, इसलिए बैकअप का विचार महत्वपूर्ण है। बैटरी की समस्या में ऐप गतिविधि की जांच करना उपयोगी शुरुआती कदम है, जबकि फैक्ट्री रीसेट को अंतिम उपाय मानना चाहिए। रीसेट से पहले व्यक्तिगत डेटा डाउनलोड और खाते की जानकारी के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इस भाग की ताकत यह है कि यह उपयोगकर्ता को छोटी परेशानियों पर तुरंत नया उपकरण लेने या अनावश्यक तकनीकी सहायता खोजने के बजाय व्यवस्थित जांच की दिशा देता है। फिर भी गंभीर हार्डवेयर या खाते की समस्या में अमेज़न की आधिकारिक सहायता लेना अधिक सुरक्षित रहेगा। निष्कर्ष में अमेज़न किंडल फायर HD 10 2021 यूजर गाइड उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्होंने हाल में 11वीं पीढ़ी का फायर HD 10 लिया है और जिन्हें शुरुआत से क्रमबद्ध सहायता चाहिए। वरिष्ठ नागरिक, पहली बार टैबलेट इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति तथा अपने बच्चे के लिए नियंत्रित डिजिटल वातावरण बनाना चाहने वाले अभिभावक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता इसके विषय विस्तार में है। यह केवल स्क्रीन चलाने की प्राथमिक बातें नहीं, बल्कि खाता, इंटरनेट, ईमेल, एप्स, एलेक्सा, मीडिया, लाइब्रेरी, ईबुक, प्रोफाइल, स्टोरेज और रीसेट को एक ही उपकरण के संदर्भ में जोड़ती है। चित्रात्मक और चरण आधारित प्रस्तुति का घोषित उद्देश्य तकनीकी कामों को कम भयावह बनाना है। समान श्रेणी की अनेक स्वतंत्र यूजर गाइड अक्सर किसी एक क्षेत्र जैसे एलेक्सा या सामान्य नेविगेशन तक सीमित रहती है। इसके विपरीत यह पुस्तक फायर टैबलेट के अमेज़न केंद्रित अनुभव और गूगल प्ले स्टोर जैसे विस्तारित विकल्प दोनों को शामिल करने का प्रयास करती है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है। उपलब्ध पाठक प्रतिक्रियाओं में कुछ लोगों ने इसे सहायक पाया, जबकि कुछ ने इसे अपेक्षा से कम विस्तृत बताया। इसलिए इसे आधिकारिक अमेज़न सहायता का पूर्ण विकल्प नहीं बल्कि आरंभिक संदर्भ पुस्तिका समझना बेहतर है। इंटरफेस बदलने पर नवीनतम ऑन स्क्रीन निर्देश और आधिकारिक सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही पाठक के लिए इसका मुख्य लाभ आत्मविश्वास के साथ सामान्य कार्य सीखना, परिवार के अनुसार सुरक्षा तय करना और सामग्री तथा उपकरण का नियमित प्रबंधन करना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर एशेस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।